नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। आपको याद होगा कि जब हमने ये सफर शुरू किया था तब हमारे पास एक सवाल था कि आज ऐसा क्या हो गया है कि हम अपने सभी मूल्य खो बैठे हैं, क्यों मुझे इतना गुस्सा आता है और क्यों रिश्तों में इतनी कड़वाहट आ चुकी है। फिर हमने तलाशा अपने आप को, हु एम आई, ये सवाल था सामने, परमात्मा की पहचान हुई, कई सारे और मुद्दे सामने हुए। आज हम एक नई दिशा में बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाली कई कड़ियों में हम उन्हीं रिश्तों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, वो रिश्ते जो हमारी जिंदगी में बहुत अहम है, क्योंकि अगर हम देखें तो हमारा पूरा जीवन रिश्तों के आसपास ही घूम रहा है और ऐसा लगता है कि आज उन्हीं मीठे प्यारे रिश्तों में कहीं कड़वाहट आ गई है, कहीं ठंडे पड़ गए हैं। क्या ऐसा हो गया है? चाहे वो रिश्ता एक पिता और पुत्र का हो, माँ या बेटी का हो, पेरेंट चाइल्ड का रिश्ता हो, या फिर पति पत्नी का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता, रिश्ते कितने ही हो सकते हैं, पर्सनल रिलेशनशिप्स, प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स, बॉस और सबॉर्डिनेट का रिश्ता, आगे बढ़े समाज में और आगे बढ़ते जाएं तो कई सारे और रिश्ते सामने आएंगे, दोस्त और दोस्त का रिश्ता। क्या हो गया है ऐसा कि रिश्तों में ही हम एक दूसरे के दूर होते जा रहे हैं? जहां नजदीक आना जाते हैं वहां कोई ना कोई समस्या आ जाती है। तो आज से ये नई जो श्रृंखला शुरू कर रहे हैं उसमें हम रिश्तों को ही खंगालेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कोई रास्ता है जो हम इन रिश्तों को दोबारा नजदीक ला सकते हैं। हर बार की तरह इस सफर में भी हमारी हम सफर है, हमें किस तरह से अपने रिश्तों को और प्यारा करें, मधुर करें, ये बताने के लिए हमारे साथ है ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
ओम शांति।
बहुत से रिश्तों को हमने अभी बात की है सिस्टर शिवानी, क्योंकि इतने सारे मेल्स जो आ रहे हैं, इतनी सारी बातें जो हम करते आ रहे हैं, हमने जब शुरुआत भी की थी तो यही किया था कि कहीं रिश्तों में परेशानियां बहुत है। आज इस शुरुआत को जब हम कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले उस सबसे प्योर रिश्ते की बात करते हैं, उस मीठे रिश्ते की, उस पवित्र रिश्ते की जिसको हर कोई बहुत प्यार से देखता है, वो है एक पेरेंट और चाइल्ड का, माँ बाप और उनके बच्चों के साथ जो संबंध है। तो जानते हैं कि वो भी आज प्रश्न चिन्ह लग चुका है, उसके ऊपर भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, व्हाट इज़ हैपनिंग। उसमें भी कई पड़ाव आते हैं। आज शुरुआत से शुरू करते हैं। वो बच्चा जो गर्भ में है, वूम्ब में है, यू नो, वहीं से शुरुआत,
वहीं से एक रिश्ता बनना शुरू,
क्योंकि आपने भी तो, हमने जो बात की है उसमें ये है कि 4 महीने में आत्मा आ जाती है तो वो एक इंडिविजुअल है जो वूम्ब में है, इसका मतलब सब कुछ चलना शुरू हो गया है उसके साथ। मेरा पहला सवाल ये है कि आज के इस दौर में जब हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, मैंने ज़्यादातर पेरेंट्स को देखा है, माओं को देखा है, फादर्स को देखा है, सारी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, किस तरह की डिलीवरी करनी है, इसके बारे में क्या खाना है, किस तरह की, यू नो, लाइक क्या क्या होना चाहिए, क्या होगा आगे के लिए, ये भी बात कर रहे हैं। उसके बावजूद भी जब वूम्ब में है बच्चा तो उस पर क्या इफ़ेक्ट हो रहा होता है, किस चीज़ का सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ रहा है?
फंडामेंटल, जैसे आपने सारी बातें की कि आजकल बाह्य रीति से हम सारा ध्यान रख रहे हैं, लेकिन पूरी डेवलपमेंट में जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो है थॉट लेवल का। क्योंकि जो प्रकार के थॉट्स हम क्रिएट कर रहे हैं, वो बॉन्डिंग जो एक क्रिएट होनी चाहिए वो क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि हमारी क्वालिटी ऑफ थॉट्स क्या है। आज ऐसा भी हो रहा है कि कई बच्चे जब पैदा होते हैं, यू नो, पहले भी हम देखते थे कि बच्चे पैदा होते ही कई बार शारीरिक रीति से कमज़ोर हैं, यू नो, फिजिकली नॉट वेरी हेल्दी, और इसीलिए माँ को हमेशा ये मतलब शिक्षा मिलती है कि अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि जैसा आपका स्वास्थ्य होगा तो आने वाले बच्चे का स्वास्थ्य भी बिल्कुल उस पर डिपेंडेंट है। अब एक और एस्पेक्ट कि आपका मानसिक स्वास्थ्य कैसा है, हाउ आर यू फीलिंग मेंटली, क्योंकि जैसा आपका मानसिक स्वास्थ्य होगा वैसे ही उस बच्चे का भी बनेगा। इट इज़ वेरी सैड, लेकिन आजकल बहुत छोटे छोटे बच्चों को साइकाइट्रिस्ट के पास लेकर जाया जाता है। चाइल्ड साइकोलॉजी इज अ सेपरेट, you know, department by itself, and you have 2 or 3 year old children, जो डिप्रेशन के लिए मेडिकेशन ले रहे हैं, और ये कहा जाता कि ये बच्चा पैदा ही इमोशनली वीक हुआ था, क्योंकि अभी तक तो कुछ बहुत ज़्यादा हुआ नहीं है उसके जीवन में, अभी तो वो स्कूल भी नहीं गया, क्योंकि जनरली कहते हैं स्कूल जाने के बाद द स्ट्रेस लेवल स्टार्ट्स, लेकिन अभी वो 2 साल का बच्चा स्कूल नहीं गया. तो डॉक्टर कहते हैं दे आर बॉर्न इमोशनली वीक. नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दे आर बॉर्न इमोशनली वीक इज प्रोबेबली हिंटिंग एट द फैक्ट दैट द मदर was emotionally weak during this period.
Okay, in fact, here I would like to ask one question. Mothers, ज़्यादातर मैंने देखा, especially first जब baby हो रहा है, पहला experience है, इतने सारे physical discomforts हो रहे होते हैं, उसी time पे शादी हुई होती है, adjustments भी नहीं हो रही होती
है. And आजकल के समय में उसी time पे नया career भी होता है.
बिल्कुल. तो मतलब इतनी सारी adjustments.
बहुत ज़्यादा stress है. You know, under a condition of stress, the new creation will obviously get affected.
यहाँ एक जो एक I think fundamental difference जो बहुत से नहीं जान पा रही हैं mothers भी और parents भी, वो ये कि क्या फर्क पड़ता है कि बच्चे के प्रति, if there is a child in the womb, उसके प्रति तो आपके thoughts बहुत positive हैं, प्यार से भरे हुए हैं, क्योंकि एक नया सृजन हो रहा है. लेकिन आम जिंदगी में आप इतने depressed हैं, लेकिन आपके लिए सिर्फ एक जो खुशी का लम्हा है उसके बारे में सोचकर. तो मैं ज़्यादातर पेरेंट्स से या माओं से जब बात होती है तो वो कहते हैं कि हम अपने बच्चे को तो पॉजिटिव वाइब्स दे रहे थे क्योंकि मैं उसके प्रति बहुत पॉजिटिव थी.
सी, बात देने की नहीं है. यू नो, इट्स लाइक, हाँ, आप अपने बच्चे के प्रति कभी नेगेटिव नहीं सोच सकते. जब अभी वो वूम्ब में है तब भी नहीं, जब वो बाहर इस दुनिया में आ जाएगा तब भी नहीं, जब वो बड़ा हो जाएगा तब भी नहीं सोचेंगे. एक पेरेंट कभी भी बच्चे के प्रति नेगेटिव नहीं सोचेगा, लेकिन एक पेरेंट सारा दिन क्या सोच रहा है? इट इज़ वाइब्रेशन, इट इज़ एनर्जी, एंड एनर्जी इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड हियर. हर थॉट जो आप क्रिएट कर रहे हैं, एवरी सिंगल थॉट, प्लीज दिस हैज टू बी टेकन केयर, एवरी सिंगल थॉट ये एनर्जी है, एंड एवरी सिंगल थॉट उस आत्मा पर अपना प्रभाव डाल रही है.
आपके आपसे जा रही है.
जैसे हर संकल्प आपका शरीर पर प्रभाव डालता है, जैसे आपके संकल्प वैसे शरीर बनेगा. आपका हर संकल्प वायुमंडल पर प्रभाव डालता है, आपका हर संकल्प संबंधों पर प्रभाव डालता है. व्हाट इज अ रिलेशनशिप? अ रिलेशनशिप इज ओनली एक्सचेंज ऑफ एनर्जी. कि एक दो के साथ हमारा जो एनर्जी है वो किस प्रकार की हम एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं, बट दैट डिपेंड्स ऑन के सारा दिन कौन सी क्वालिटी की एनर्जी हम क्रिएट करते हैं. इट इज़ ओके दैट आई मीट यू राइट नाउ फॉर 10 मिनट्स एंड मैं आपके प्रति तो पॉजिटिव हूँ, लेकिन अगर मेरा सारा दिन बहुत नेगेटिव बीता है तो यहाँ आने के बाद भी भले आपसे बहुत अच्छी तरह से बात करूँ, लेकिन व्हाट इज गोइंग ऑन हियर इनसाइड इज नेगेटिव
एंड वेरी डिप्रेस्ड, यू नो, राइट. और मे बी
ये जो है, जो क्रिएट हुआ हुआ है, ये कहाँ जाएगा? वातावरण में जाएगा. कहाँ तक पहुँचेगा? आप तक पहुँचेगा. तो अभी तो आप एक डिफरेंट इंडिविजुअल है, तब भी वो एनर्जी आप तक पहुँच रही है. तो जो बच्चा वूम्ब में है उस तक वो एनर्जी नहीं पहुँचेगी. एंड इट्स नॉट ओनली द मदर, इट्स ऑल्सो द फादर. एंड इट्स नॉट ओनली द फादर, इट्स एवरी मेम्बर इन द फैमिली. घर का वायुमंडल क्या है वो आप एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट भी क्रिएट कर सकते हैं, या आजकल बहुत स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट होने के कारण. और इसीलिए जो कहा कि बच्चा इज बॉर्न इमोशनली वीक, क्योंकि नेगेटिव वायुमंडल में अगर वो पैदा हुआ है तो ऑब्वियसली उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी? इट्स नेगेटिव. और फिर आने के बाद भी उसको किस प्रकार का वायुमंडल मिलेगा? नेगेटिव. उसको कोई नेगेटिव नहीं बोल रहा है या सोच रहा है, लेकिन ओवरऑल एनर्जी लेवल पूरा घर के अंदर क्या है. सो द मदर, the father, everybody needs to take care of all their thoughts. मतलब भले उनको ये लगे कि ये तो बहुत मुश्किल है, लेकिन this is the biggest thing that you can do for your child. तो जैसे हम ये ध्यान रखते हैं कि क्या भोजन खाना है, क्योंकि उससे बच्चे पर इफेक्ट पड़ता, वैसे ही हमें ये सोचना होगा कि मन के लिए कौन सा भोजन, मन में कौन से thoughts होने चाहिए, क्योंकि उसका इफेक्ट बच्चे के मन पर भी पड़ता और उसी का इफेक्ट बच्चे के शरीर पर भी पड़ता है. बच्चे के पैदा होने के बाद तो हम बहुत ध्यान रखते हैं उसका, क्योंकि सारी जीवन ही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन एक्चुअली उससे भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले से ही स्टार्ट हो जाती है. और हम लोग बहुत ध्यान रखते हैं वैसे हर बात का, लेकिन जो मेन फंडामेंटल बात है शायद उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता.
तो शिवानी, इससे भी थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, जब विचार की ही हम बात कर रहे हैं तो व्यवहार में ही जब आ जाता है, खासकर मेल फीमेल चाइल्ड का जो एक डिफरेंस है, इवन इफ माँ नहीं कह रही, पिता नहीं कह रहा, थॉट में भी अगर आ जाता है और ग्रैंड पेरेंट्स भी या कोई भी समाज का जो भी व्यक्ति है थॉट में भी आ जाता है, तो क्या वो बच्चे तक पहुंच रहा है?
एब्सोल्युटली, एनर्जी है. हमें एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये एवरी थॉट, मतलब मे बी वी आर रबिंग इट इन अगेन एंड अगेन, बट दैट्स द फंडामेंटल थिंग एंड अनफॉर्चुनेटली द मोस्ट निग्लेक्टेड थिंग. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और फिर भी वो ऐसी चीज़ है जिसकी तरफ हमारा सबसे कम ध्यान है, और वो ये कि हर थॉट जो हम क्रिएट कर रहे हैं वो जिसके प्रति क्रिएट की जा रही है वो उसकी तरफ तो डायरेक्टली जा रही है. जैसे ही एक संकल्प में भी आया कि लड़की पैदा हुई है या लड़की पैदा होने वाली है, दैट्स ऑल. द फर्स्ट थॉट ऑफ रिजेक्टिंग दैट चाइल्ड एंड समवेयर अनइंटेंशनली हमने उस बच्चे को अपने से थोड़ा सा दूर कर दिया. यहाँ पर हमें सबसे इम्पोर्टेंट ये याद रखना है कि कौन आ रहा है. एक आत्मा, यू नो, सोल कॉन्शियसनेस से सारा कुछ चेंज हो जाता है. एक आत्मा जिसके साथ मेरा एक नया एक्सचेंज ऑफ अकाउंट्स स्टार्ट होने वाला है, वो आत्मा जिसके साथ मेरा कोई बहुत विशेष लेन देन है वो हमारे घर में आ रही है. एंड एवरी मेम्बर ऑफ आर फैमिली हैज़ अ सर्टन, you know, very deep account with that soul. And इसलिए वो आत्मा हमारे घर में आ रही है. तो उस आत्मा का आह्वान करो, उस आत्मा को reject नहीं करो.
This is wonderful, you know, the moment we start living in soul consciousness, जैसे ही हम उस पूरे एहसास के साथ जीते हैं, पूरा thought process change हो जाता है.
change हो जाएगा.
अब मुझे समझ में आ रहा है कि हम ये रिश्तों की जो आगे पूरी, you know, विवेचना करने वाले हैं, क्योंकि कितना different perspective हो जाएगा.
Absolutely.
It's not that I own that child who is going to come, लेकिन एक relationship ऐसा है, एक account है उसके साथ, जो कि अब आगे और पता चलेगा कि मैं कैसे उस account को आगे handle करूँगी.
और उसको कितना सुंदर रीति से हम चला सकते हैं आगे, क्योंकि एक आत्मा आई है जिसके साथ हमारा बहुत deep exchange है of energy, क्योंकि it's the deepest relationship which is going to take place. So let me start it on a very pure and positive note rather than, you know, a negative thought.
स्वागत करें एक नई आत्मा, एक नए सोल का, एक नए आगमन का. बहुत सुंदर. So actually it has even made me feel, you know, differently.
First step पे हम किस thought level पर चल रहे हैं, क्योंकि अभी तो बच्चे की development की stage है, तो वो अभी बहुत ज़्यादा अपने आप उतना ज़्यादा विवेक, see mind is there. One thing we will have to remember कि कौन आया है. आत्मा आई है. कॉस्ट्यूम छोटा है, यू नो, हम कहते हैं ये तो बच्चा है, इसको कुछ समझ में नहीं आता. एक क्षण के लिए थोड़ा सा ब्रॉड पर्सपेक्टिव से देखेंगे, आत्मा है, कुछ महीने पहले तक एक बहुत बुजुर्ग शरीर में थी, यू नो, एक 50, 60, 70 जो भी एज के शरीर में थी, कॉस्ट्यूम वो था, आत्मा वही थी. अकाउंट पूरा हुआ, उस आत्मा ने वो वाला कॉस्ट्यूम छोड़ा और दूसरा कॉस्ट्यूम लिया. अब कॉस्ट्यूम छोटा है, आत्मा वही है. दिस इज अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड कि हम किससे रिलेट कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, किसके साथ थॉट एक्सचेंज कर रहे हैं. वो एक आत्मा है, उसके अंदर भी उतनी ही सोचने की शक्ति है जितनी हमारी है. ब्रेन डेवलप नहीं हुआ है, दैट इज ओके, दैट्स लॉ ऑफ नेचर. तो वो प्रकृति के अनुसार, एज के अनुसार डेवलप होगा, तो उसका बोलना, सुनना, चलना, लेकिन सोचना, दैट इज नॉट गोइंग टू डेवलप विद द एज, बिकॉज दैट इज द फैकल्टी ऑफ द सोल, नॉट ऑफ द बॉडी. तो आत्मा तो सोच रही है, वो संकल्प कर रही है, और वो हमारे संकल्प कैच भी कर सकती है. इसलिए हर संकल्प जो हम कर रहे हैं उस बच्चे के साथ या उस बच्चे के प्रति या घर में, वी नीड टू बी वेरी केयरफुल ऑफ व्हाट वी आर डूइंग, व्हाट वी आर सेइंग, बिकॉज़ एवरीथिंग इज रीचिंग द सोल.
दैट्स ग्रेट. एक्चुअली होता ये है कि जब बच्चा होता है तो हमारे लिए एक वन रिस्पॉन्सिबिलिटी मान लेते हैं, दूसरा ये कि ये मेरा है, यू नो, तो वो गुड्डा है, गुड़िया है, उस तरह से एक इंडिविजुअल की तरह. और कहा यह जाता है कि एक रिसर्च ये कह रही है कि 2 साल के अंदर अंदर तक, 24 मंथ्स, द होल ऑफ द ब्रेन हैज बीन डेवलप.
एब्सोल्युटली,
पूरा डेवलप हो चुका होता है 2 साल में ही. तो इट मीन्स वो इंडिविजुअल तो हो गया,
हो गया, वो ऑलरेडी इंडिविजुअल है. सी, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, आत्मा वही है. डेवलप, आत्मा की डेवलपमेंट नहीं होती है, ब्रेन की डेवलपमेंट है. सिर्फ ये है कि आत्मा एक्सप्रेस नहीं कर पाती है बिकॉज द बॉडी इज नॉट ग्रोन अप, बट द सोल डजंट हैव टू ग्रो अप. तो जब आप उस बच्चे को उस पर्सपेक्टिव से देखेंगे, यू सी, योर होल लेवल ऑफ इंटरेक्शन विल चेंज. देर विल बी मोर रिस्पेक्ट, देर विल बी मोर मेच्योरिटी इन योर इंटरेक्शन. आई एम टॉकिंग टू दैट ब्यूटिफुल पॉइंट ऑफ लाइट. एंड एवरी टाइम जब आप एक बच्चे को देखें कि इंस्टेड ऑफ यू नो सोल कॉन्शियसनेस बच्चे से ही कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ ओनली लुकिंग एट द फिजिकल एस्पेक्ट लुक एट द चाइल्ड लाइक दैट कि दिस इज अ प्योर सोल. एक्चुअली हम बहुत ज़्यादा एम्फेसिस जो कि इम्पोर्टेंट है ऑन द फिजिकल डिवेलपमेंट ऑन द इंटेलेक्चुअल डिवेलपमेंट. हर एक व्यक्ति के एवरी ह्यूमन बींग हैज़ फोर एस्पेक्ट्स फिजिकल इंटेलेक्चुअल या मेंटल कहें सोशल एंड स्पिरिचुअल. अब बचपन से ही कहीं ना कहीं ऐसा हो गया कि हमने तीन एस्पेक्ट्स पे तो बहुत अच्छा ध्यान दिया फिजिकल डेवलपमेंट इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट. आप शरीर की डेवलपमेंट के लिए अच्छा भोजन एक्सरसाइज इंटेलेक्चुअली बेस्ट स्कूल बेस्ट नॉलेज एवरीथिंग. सोशल आपको ये हॉबी क्लासेस में जाना है इस क्लब में जाना है सब कुछ यू हैव टू बी द बेस्ट इन एवरीथिंग. स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पता नहीं शायद क्या होता है. सो दैट एस्पेक्ट गेट्स निगलेक्टेड राइट फ्रॉम चाइल्डहुड. एक बचपन से ही वो एस्पेक्ट ही निगलेक्ट हो गया और वो इतना निगलेक्टेड होता रहा कि बड़े होने के बाद वो एस्पेक्ट की भी अवेयरनेस भी नहीं है. तो हम अपनी टेबल को अपने जीवन की इस टेबल को तीन पैरों पर खड़ा करके रखा हुआ है और चौथा पैर ना के बराबर है तो वो टेबल कहाँ सेट होगी. जितना हम स्पिरिचुअल डेवलपमेंट अर्थात कि सोल कॉन्शियसनेस तो प्रैक्टिस करेंगे हम करेंगे बच्चे को शायद उसकी उतनी अवेयरनेस ना हो लेकिन बच्चे को
ट्रीट शायद
ट्रीट हम जितना उस आत्मस्वरूप को देख कर करेंगे कि दिस इज ऑल्सो अ पीसफुल सोल प्योर सोल तो क्या वाइब्रेशंस जाएंगे और उससे उस आत्मा की जो सेल्फ एस्टीम है. सी मेजोरिटी ऑफ अस आर फेसिंग अ प्रॉब्लम ऑफ लो सेल्फ एस्टीम क्योंकि हमने अपनी सेल्फ एस्टीम किस चीज़ पर बेस की कि हमारी डिग्रीज क्या है हमारी क्वालिफिकेशंस क्या है हमारे पास कितना धन है कितनी पोजिशन है क्योंकि बचपन से ही कहीं ना कहीं वो सिस्टम में फिट
हम परफॉर्म कितना कर रहे हैं. जैसे ही बच्चा बड़ा हुआ 2 साल का 10 लोग बैठे हैं परिवार में कोई आया है आप परफॉर्मेंसेस शुरू करवा दो
राइट आप ये करके दिखाओ आप ये बोल
कर दिखाओ सुनाओ आप ये बताओ आप ताली बजा. इनफैक्ट 6 महीने का बच्चा ताली बजा रहा होता है यू नो इवन दांत निकल आता है तो इट्स अ बिग अचीवमेंट.
एंड अब ये कहाँ साइकोलॉजिकली फिट हो रहा है कि जैसे ही वो बच्चा परफॉर्म करता है हम सब वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं विच इज़ ओके वी नीड टू अप्रिशिएट दैट लेकिन उसके माइंडसेट में उसके बिलीफ सिस्टम में ये बैठता जा रहा है कि जब हम इस तरह से कुछ करके दिखाते हैं यू नो व्हेन वी अचीव समथिंग लाइक दिस वी गेट अप्रिसिएशन. एंड ये एक बहुत 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 डीप बिलीफ सिस्टम है कि अचीवमेंट से ही अप्रिसिएशन मिलेगी. What I am as an individual, what are my values, what are my qualities, इसकी कोई appreciation कभी किसी ने की नहीं. Appreciation was always for आपने कितना अच्छा डांस किया आपको किस गेम में गोल्ड मेडल मिला आपको स्कूल में कितने मार्क्स मिले. तो अचीवमेंट हर स्टेप पर आपकी अचीवमेंट को चेक किया गया और अचीवमेंट के आधार से appreciation. तो किस बिलीफ सिस्टम से हम बड़े हुए लाइफ आगे की भी क्या रही यही बनती रही ना कि पोजीशन स्टेटस सैलरी मकान गाड़ी क्योंकि जितनी अचीवमेंट होती जाएगी लोगों से अप्रिसिएशन मिलती जाएगी मेरी सेल्फ एस्टीम उस पर डिपेंडेंट थी. अगर एक बचपन से ही यू नो चाइल्ड के अंदर ये डलता जाए दैट इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट व्हाट यू अचीव बट इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट on what kind of an individual you are, what is, how do you feel inside, how do you think inside, what are your values, is honesty your value, is love your value, is peace your value, and if you express these values, you will get appreciation.
लेकिन ये reinforced नहीं हुआ. Parent की एक बात मैं पूछती हूँ कि एक as a mother, as a father, जब मैं अपने बच्चे के साथ होती हूँ इतना छोटा बच्चा जब है तो मैं फील जब तक ये नहीं इट्स अ नेचुरल फीलिंग कि इट्स माय बेबी राइट आई एम दैट इज़ व्हाई आई एम रेडी टू डू एनीथिंग आई एम रेडी टू सेक्रीफाइस एनीथिंग. लेकिन अगर मैं एक इंडिविजुअल के रूप में उसको लेने लग जाऊंगी कि वो भी एक इंडिपेंडेंट सोल है जो कि मेरी ही एक्सटेंशन नहीं है ये एक और मेजर बिलीफ है माई चाइल्ड इज़ माई एक्सटेंशन आई थिंक. तो यहाँ मेरा सवाल भी ये है मेरा जवाब भी मुझे अपने आप ही दिख रहा है लेकिन मैं पूछना ज़रूर चाहूँगी क्योंकि बहुत से पेरेंट्स के पास ये होगा सवाल कि जब मेरे को मेरे बच्चे के साथ इतना ज़्यादा जुड़ाव होगा तभी तो मैं सो सब कुछ कर पाऊँगी उसके लिए या कर पाऊँगा जो मेरी जिम्मेदारी है जो आगे मुझे अभी और भी करना है.
अटैचमेंट एंड प्यार, थोड़ा सा इसमें हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है. वी वॉन्ट टू डू द बेस्ट फॉर आवर चाइल्ड. अभी अगर उस बच्चे को सपोज गलती से चोट लग जाती है, माँ का क्या हाल होता है?
इट्स इम्पॉसिबल. आई थिंक इट्स शी गेट्स हर्ट.
राइट? व्हाई? बिकॉज ऑफ अटैचमेंट. अब वी नीड टू आस्क, इज इट बेनिफिशियल? Is it beneficial for the mother to go through so much pain at that time? And if the mother is in pain, will she really be able to look after the child well? You know, bachcha to hai, lekin if the mother is in pain, in confusion, stressed out, ki hai mere bachche ko kya ho gaya, kya wo us bachche ko us samay jo right treatment chahiye ya jo right vibration chahiye? See, there's another individual, he is in pain, he or she is in pain. उसको मेरे से क्या चाहिए? अभी हीलिंग करनी है,
केयर चाहिए,
हीलिंग करनी है. तो केयर फिजिकली तो हम करते हैं, लेकिन हीलिंग के लिए सबसे पहले चाहिए पॉजिटिव एनर्जी. हमने देखा कि अगर हम पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करें तो हमारा शरीर का अंग जो तकलीफ में है वो जल्दी ठीक होता है, और नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करें तो उसको टाइम लगता है. सिमिलरली विद द चाइल्ड, इफ आई रियली वॉन्ट टू गेट द चाइल्ड टू गेट ओके सून, I have to give lot of positive energy.
Lekin yahan ek practical
lot of love.
Yeah, lot
of compassion.
But then
not pain.
Yeah.
He's already in pain.
Yeah, but then you know, like it's so much inbred. This is what I think lot of
yahan hi to soul consciousness ka. Yahan hi
to soul. It's so difficult because you continuously feel so much in pain, you know.
Yeah, but that's okay. If you want to be in pain, please continue being in pain. That's okay. But please remember that your pain is reaching out to the child.
So actually,
and ask yourself, do you want to give pain?
No.
Then wo question aa jata hai na. Agar you are in pain, aur hamare paas justification bhi hai us cheez ke liye, ki I'm attached to the child, to mujhe, you know, dard hona hi chahiye. To theek hai, dard aapka to nuksan karega hi karega. Lekin what about the child? Do you want to give pain? And more important, agar hum positive state of mind mein hai, we know the right action to take. Ki abhi kya karna hai? Confused state mein kya right action lenge? Kai bar the mother only collapses over there. You know, bachche ko kuch hua, the mother doesn't know what to do. She's all confused. Yahan phone kare, wahan kare. You need to heal. You know, so that's why detachment. Hum detachment ko agar right perspective mein samjhe, to usse koi pyar kabhi kam nahi hota hai. Pyar badhta hai. क्योंकि दर्द निकलता जाता है. अभी क्या है, अटैचमेंट में प्यार तो है लेकिन दर्द भी है बहुत सारा. तो द चाइल्ड गेट्स लव एंड पेन. व्हेन देयर इज अटैचमेंट देयर इज लव एंड पेन बोथ. देयर इज लव, नो डाउट अबाउट दैट. तो इसलिए लोग कहते हैं ना, अटैचमेंट को कैसे खत्म कर दे, बिकॉज दे फील दैट इज ओनली लव. तो लव को खत्म नहीं करना. तो अटैचमेंट इज लव एंड पेन बोथ, बट इट इज अ पैकेज. डिटैचमेंट इज lot of love minus the pain. Then we understand ki which one is more healthy, mere liye bhi aur us sambandh ke liye bhi, chahe wo bacche ka sambandh ho ya koi bhi sambandh ho. I don't want to give pain and neither do I want to feel pain, because if I feel pain I will give pain.
Yeah, because
it falls swaroop hai. You know, I cannot say ki I am feeling pain but I don't want to give pain. Wo waisa hone nahi wala hai. If I am hurt, vibration of hurt will reach. If I am upset, vibrations of being upset will reach. इसलिए डिटैचमेंट मतलब सोल कॉन्शियसनेस. कि एक मदर और नर्स में देखो क्या फ़र्क है. एक नर्स सपोज मदर है, या एक डॉक्टर मदर है, वो सारी दुनिया का इलाज कर सकती है
अपने बच्चे का.
अपने बच्चे का नहीं, एक दवाई खिला देगी, लेकिन अगर इंजेक्शन लगाना है, सर्जरी करनी है, वो अपने बच्चे का नहीं कर सकती है, बिकॉज द हैंड स्टार्ट ट्रेम्बलिंग. तो ये दैट इट्सेल्फ इज़ अ साइन कि जहाँ अटैचमेंट आई वहाँ एफिशिएंसी बढ़ी या कम हुई.
तो इनफैक्ट यू नो लाइक होल पर्सपेक्टिव चेंजेस. मैं बार बार ये कह रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है खुद को कि पूरा का पूरा देखने का तरीका, नज़रिया बदल जाता है. लेकिन सिस्टर शिवानी, हम खुद को तो सोल कॉन्शियसनेस में रखने में अभी उतने कामयाब नहीं हुए हैं. बच्चे तक सोल कॉन्शियसनेस आना कितना वक्त लग सकता है? क्योंकि आई थिंक इट्स अ प्रैक्टिस विच रियली
इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट. इट्स वेरी नेचुरल. और बच्चे के साथ तो बिल्कुल नेचुरल है, क्योंकि बच्चे की अपनी ईगो नहीं है. यू नो, जब दो लोगों की ईगो टकराती है तो कहीं ना कहीं थोड़ी प्रॉब्लम है. लेकिन बच्चा इज ईगोलेस. एंड अगर उसके सामने हम ये सोल कॉन्शियसनेस यू नो इस अटेंशन पर रखें, इट विल बी अ मोस्ट ब्यूटिफुल रिलेशनशिप. करना क्या है, जैसे पहले भी देखा, सवेरे उठकर 10 मिनट अपने आप से बैठें, उस स्वरूप में वापस स्थित हो, अपने आप को याद दिलाएं कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ. इट्स वेरी इम्पोर्टेंट अगेन एंड अगेन एंड अगेन टू रिमाइंड, मैं एक माँ हूँ, नहीं ये मेरा रोल है, लेकिन मैं कौन हूँ जो ये रोल प्ले कर रही हूँ. आई एम अ प्योर सोल प्लेइंग द रोल ऑफ अ मदर और अ फादर. दैट मीन्स इररिस्पेक्टिव ऑफ वट एवर हैपन्स, purity should be there in every thought, word and action, because I am a pure soul playing that role. You know, if it's I'm just a mother or a father, then I have the freedom to shout at the child, to you know, to behave in different ways, to think negative, but I'm a pure soul playing that role. This is soul consciousness. Soul consciousness doesn't mean ke sara din main atma hu, main atma hu, sirf bolne se nahi hoga.
Action.
Lekin ye yaad jab rahega ki main ek pavitra atma hu, main ek shant swarup atma hu, aur wo bachcha bhi kaun hai, wo bhi ek pavitra atma hai. So you are exchanging the highest level of and the most elevated and the purest energy. Isse zyada strong relationship
कहीं नहीं हो सकता. डेफिनेटली कहा भी यही जाता है.
एंड फिर सारा दिन उसको प्रैक्टिस करें, उस अवेयरनेस में रहे, एंड इट विल बी अ वेरी स्मूथ जर्नी.
बहुत सुंदर. एक ऐसे रिश्ते को एक नई पहचान आपने दी जो कि ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग माना जाता है, और आज एक नए परिपेक्ष में हम उसको देख पाए. आपका बहुत बहुत शुक्रिया.
ओम शांति.
ओम शांति. अगली बार जब आप अपने उस मासूम नन्हे से बच्चे की आंखों में देखेंगे और सोचेंगे कि कितना प्योर, कितना पवित्र है, तो वो बच्चा नहीं, वो सोल है. उस आत्मा को देखने की कोशिश कीजिए और एक नए नज़रिए से उस नन्हे मुन्ने के साथ अपना रिश्ता जोड़िए, और ये कोशिश कीजिए खुद को एहसास दिलाने की. बाकी सबको एहसास अपने आप होता जाएगा, लेकिन एज अ मदर, एज अ फादर, एज अ पेरेंट, इफ दिस रिलेशनशिप डेवलप्स दैट ही और शी द चाइल्ड इज ऑल्सो एन इंडिविजुअल, अ सोल विच हैज़ हर ओन क्वालिटीज, आई थिंक जिंदगी बहुत सुंदर हो जाएगी. एक नया खूबसूरत रिश्ता जुड़ेगा जिसमें दर्द नहीं होगा. कोई और सवाल है, कोई ऐसी बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, स्वागत है. आप हमें फ़ोन पर या फिर ईमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं. रिश्तों को जांचने का, उन्हें एक नई नज़र से देखने का एक प्रयास हमारा अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज नन्हे मुन्ने बच्चे के साथ एक नया रिश्ता जोड़ा है, माँ बाप का, हम सबका. आगे बढ़ेंगे अगली कड़ी में, थोड़े अगले पड़ाव पर चलेंगे, और बच्चा जब पढ़ाई या एजुकेशन की पहली सीढ़ी पर चढ़ता है तब क्या हमारी उम्मीदें रहती हैं, किस तरह से हम सोल कॉन्शियसनेस में रहकर उस परिप्रेक्ष्य को बदल सकते हैं, जानेंगे अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी की अगली कड़ियों में. दीजिए इजाज़त. नमस्कार.